निवेदन। हिंदी साहित्य की लगभग एक सहस्त्र वर्षों की दीर्घकालीन परंपरा में जिन कवियों के देन महत्वपूर्ण है, उनमें स्वच्छंदगामी घनानंद का नाम अनन्य साधारण है। भारतीय साहित्य में सबसे विशेष प्रकार का गुण यह है कि यह किसी साहित्य के स्वकीय प्रवाह को ग्रहण करते हुए भी अपने गुण का लोप नहीं करता, दूसरे शब्दों में अपने ही प्रवाह में उसे मिला लेता है। प्रधान और सहायक की जो स्थिति रहती है, सहायक नदी अपने अस्तित्व का प्रधान नदी से लोप कर देती है। इस प्रकार सहायक नदी का सारा जल प्रधान नदी के रूप में ही अभिहित तो होता है। घनानंद इस विशेषता से परिचित थे, इसी से उन्होंने भारतीय साहित्य प्रवाह में अपनी शक्ति द्वारा विदेशी प्रवाह को मिला दिया है। ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। जो दोनों साहित्य प्रवाहों में नदीष्ण हो, वही ऐसा कर सकता है। निश्चय ही भारतीय साहित्य की धारा प्राचीन और पुष्ट है। जो इसमें दूसरी धारा मिलाने का प्रयास करेगा, उसके स्वतः बह जाने की संभावना है। घनानंद ने काव्य प्रवाह का ऐसा मेल किया है कि सहसा मेल की प्रतीति हो ही नहीं सकती। उनका सबसे बड़ा प्रयास यही है। फारसी या उर्दू की ओर से जो हिंदी काव्य में प्रवृत्त होते हैं, वो एक तो वहाँ की शब्दावली लाकर घोषणा करते हैं कि हम कहाँ से बहते चले आ रहे हैं। घनानंद की रचना में फारसी या अरबी के शब्दों का प्रयोग नहीं है। हिंदी के मध्यकाल में फारसी के साहित्य प्रभाव द्वारा अनेक कवि बहे, उन्होंने बड़े प्रवाह को अतरलीन किया है। परकिया छाप शब्दों की छाप से तुरंत व्यक्त हो जाती है। फारसी भाषा मुहावरों पर सर्वाधिक केंद्रित रहती है, वहाँ मुहावरों के आधार पर ही काव्योक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। उर्दू ने उसकी इस विशेषता को भरपूर ग्रहण किया। घनानंद ने मुहावरों के प्रयोग की पद्धति भर फारसी से ली, पर मुहावरे हिंदी के ही प्रयुक्त किए। हिंदी में बहुत से मुहावरे फारसी से उल्टा करके रख दिए गए हैं, ऐसा इन्होंने नहीं किया। ऐसा कर सकना उसी के लिए संभव है जो हिंदी भाषा पर पूरा अधिकार रखता हो। इनका ब्रजी पर पूरा अधिकार स्पष्ट दिखाई देता है, ये ब्रज भाषा प्रवीण निश्चय ही थे। फारसी में प्रेम वैषम्य और उस वैषम्य को व्यक्त होने वाले जुगुप्सा व्यंजक गर्भ व्यापार का भी ग्रहण होता है। भारतीय काव्यशास्त्र की जुगुप्सा व्यंजक स्थिति संयोग में निषेध करता है, पर वियोग में नहीं। फिर भी भारतीय परंपरा ने वियोग में जुगुप्सा व्यंजक स्थितियों का उल्लेख करने का अभ्यास नहीं डाला। घनानंद ने काव्य की चिंता नहीं की, परंपरा का ध्यान रखा और वियोग प्रधान रचना करते हुए भी जुगुप्सा व्यंजक स्थितियों का विनियोग नहीं किया। घनानंद में भारतीय आशावाद भी सुरक्षित है, फारसी का प्रेम वैषम में आने पर भी आशावाद कहीं कम नहीं हुआ। इसमें भी इनकी दूरदर्शिता लक्षित होती है। इन्होंने अपनी रचना में रहस्यात्मक संकेत यथास्थान राधा कृष्ण को ही लिया है। निर्गुण को न लेकर सगुण को ग्रहण करने से रहस्यात्मकता की वैसी स्थिति कहीं नहीं है जैसे हिंदी के ही अन्य प्रमुख सूफी कवियों में पाई जाती है। इस प्रकार घनानंद के स्वच्छ और सूक्ष्म दृष्टि का पता चलता है। ऐसे सूक्ष्मेक्षिका संपन्न कवि की रचना की ओर ध्यान यद्यपि आधुनिक युग में भारतेंदु बापू के समय से ही था, पर पठन पाठन में इसकी सबसे पहले स्थान आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने दिया। फिर भी आचार्य जी जैसा चाहते थे वैसा उद्योग इनकी रचना के संपादन कर नहीं कर सके। इस कार्य को उन्हीं की परंपरा के प्रतीक पूज्य पिताजी ने संपन्न किया। घनानंद कवित्व का संपादन करने के अनंतर इनकी बृहद ग्रंथावली का भी संपादन करके इस अत्यंत समर्थ पर उपेक्षित कवि को हिंदी जगत के सामने प्रतिष्ठित कर दिया। जहाँ भी हिंदी की उच्च स्तर की पढ़ाई होती है, वहाँ अब घनानंद की रचना अनिवार्य रूप से रखी जाती है। जितना अधिक श्रम पूज्य पिताजी ने इस कार्य के निष्पादन करने में किया है, उसे उनके निकट रहने वाले ही जानते हैं। पर जब घनानंद की रचना पढ़ाई में सर्वत्र हो गई है, तो कुछ अर्थ लिप्सुओं ने घनानंद कवित्व की अपेक्षित अंश ज्यों के त्यों मुद्रित कराकर और उक्त पुस्तक की पादरिपणी से शब्दार्थ भी प्रायः ज्यों का त्यों लेकर अपनी पुस्तक में प्रकाशित करा दी। इनमें उन्होंने अपनी ओर से कवित्वों का अर्थ देने का जहाँ जहाँ प्रयास किया, वहाँ वहाँ भयंकर भूले हो गई। उनके कुछ हितेक्षुओं ने भूमिका लिखकर उनके प्रयास को सर्वोत्तम कहा। कोई प्रयास सर्वोत्तम हो तो उसे वैसा कहना ठीक ही है, पर अर्थ के दास भला घनानंद की रचना का अर्थ ठीक ठीक कैसे कर सकते। उनके द्वारा प्रस्तुत अर्थ से हिंदी की जिज्ञासु जगत में होने वाले अनर्थ ने मुझे चिंतित कर दिया। इस चिंता के मुक्ति के उद्योग में वह भाष्येंदु शेखर लिखा गया है। घनानंद की कृति में अर्थ संपत्ति बिहारी आदि की रचना की अपेक्षा पर्याप्त पुष्कल है। फिर भी साहित्य की परंपरा ने बिहारी के सतसैया पर जितनी टीकाएं पल्लवन उपवृहण आदि का प्रयास किया, उतना क्या कोई प्रयास घनानंद के परंपरा में नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? घनानंद के कुछ चुने हुए छंद ही परंपरा को मिले, उनकी कृतियां फैली ही नहीं सकी। ब्रजनाथ ने उनके कवित्वों का संग्रह विशेष कठिनाई से किया था, इसका उन्होंने उल्लेख किया है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि इनकी रचना की शैली इतनी गूढ़ है कि रत्नाकर जैसे ब्रजभाषा मर्मज्ञ कवि ने जब घनानंद कवित्त का सुजान सागर के नाम से सर्वथा संपादन किया तो सैकड़ों स्थानों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। जब रत्नाकर जी के लिए घनानंद की रचना के पर्याप्त अंश गूढ़ थे तो भला अन्य उस पर टीका टिप्पणी का साहस करता तो कौन करता? तीसरी कठिनाई यह भी थी कि इसके लिए श्रोता का स्तर भी कुछ ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे स्तर के श्रोता या पाठक में बहुत कम मिलते हैं। घनानंद की रचना हिंदी की उच्च परीक्षाओं में ही रखी गई है और नीचे की कक्षाओं में उनके कुछ चुने हुए छंद संग्रहित किए गए हैं। यदि परीक्षा का प्रपंच न होता तो इनकी रचना की टीका टिप्पणी की ओर बहुतों के हाथ न बढ़ते। मैंने टीका से संतोष न करके भाष्य लिखने का प्रयास किया है। मेरी साथ यही धारणा है कि थोथी टीका से घनानंद की गूढ़ रचना का रहस्य नहीं जाना जा सकता। टीका में तत्वतः अर्थ की स्थूल रूपरेखा मात्र आ सकती है। टीका तिलक की भांति बाहर से भड़कीली होती है, अर्थात टीका कृति के बहिरंग का भी अधिक स्पर्श करती है। उसके अंतर में प्रवेश का प्रयास भाष्य के माध्यम से ही हो सकता है। दूसरा स्पष्ट भेद यह है कि टीका में विस्तार नहीं हो सकता। जहाँ किसी शब्द का कुछ अर्थ खोलना है वहाँ वह सूक्ष्मता की ओर प्रवृत्त होती है, पर भाष्य में एक तो प्रत्येक शब्द का विचार किया जाता है, दूसरे उसमें विस्तार पर्याप्त होता है। टीका और भाष्य में पौधे और वृक्ष का सा अंतर है। भाष्य के लिए कहा ही गया है मूल के प्रत्येक पद के क्रम में जहाँ वर्णन हो और साथ ही भाष्य लिखने वाला अपने शब्दों में उन सब का रहस्य खोलता चले, वही भाष्य हो सकता है। प्रकरण के अनंतर इसमें चूर्णिका के अंतर्गत शब्दों का अर्थ दिया गया है। पद्य की गद्य में सरल टिप्पणी का नाम चूर्णिका है। टीका के लिए हिंदी का तिलक शब्द रखा गया है। फिर व्याख्या के अंतर्गत शब्दशः भाष्य दिया गया है। व्याकरण अलंकार तथा अन्य ज्ञातव्य विषयों का कहीं पृथक विचार है और कहीं भाष्य के भीतर है। अंत में पाठांतर भी दिए गए हैं। इतना विस्तार करने पर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब भी बहुत सी गूढ़ताओं का स्पष्टीकरण पर्याप्त विस्तार से नहीं किया जा सका है। इसमें पाठ प्राय वही स्वीकृत किया गया है जो घनानंद कवित्त में है। चूर्णिका में शब्दार्थ देते समय पूज्य पिताजी द्वारा दी गई टिप्पणियों का आधार लिया गया। कहीं कहीं तो टिप्पणी की शब्दावली ऐसी है कि उससे अच्छा कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे स्थलों में व्यवस्थापूर्वक वही पदावली ज्यों की त्यों रख दी गई है। यह भाष्येंदु शेखर 5 आननों में समाप्त होगा। घनानंद कवित्त में 505 छंद हैं। प्रथम आनन में कारणिक 100 छंदों का भाष्य दिया जा रहा है। द्वितीय आनन का लेखन चल रहा है। इन प्रथम आनन का आरंभ संवत 2012 की प्रबोधनी को हुआ था और संवत 2016 की प्रबोधनी को पूरे 4 वर्ष हो गए। इसका मुख्य कारण यही था कि अपने शोध प्रबंध के निमित्त महाराज जसवंत सिंह के काव्य विषयक अनुसंधान में मुझे समय समय पर बाहर रहना पड़ा, जिससे मैं इस कार्य को इससे पूर्व समाप्त नहीं कर सका। इस कार्य के लिए मैं पूज्य पिताजी का यही सर्वाधिक अनुग्रहित हूँ, जिनमें अंतेवासी के रूप में अध्ययन करके अनेक तथ्यों का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, जिनकी लिखित संपत्ति का आधार मैंने निसंकोच लिया और जिन्होंने इसके आरंभ में घनानंद संबंधी अपनी लिखित आलोचना और शोध सामग्री के उद्धृत करने की आज्ञा भी दे दी है। इसके प्रस्तुत करने में जिन ग्रंथों से किसी प्रकार की सहायता मिली है उनके कर्ताओं का कृतज्ञ हूँ। सबसे अंत में सुजान घनानंद का स्मरण करता हूँ, जिनकी कृति की गुत्थियाँ बिना उनके अनुग्रह के मेरे ऐसे अज्ञ के द्वारा किसी प्रकार खुल नहीं सकती थी। चंद्रशेखर मिश्र, प्रबोधनी 2016, ब्रह्मनाल, वाराणसी।